ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मरुस्थलीकरण के बढ़ते प्रभाव और इसके स्थायी समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केबी सिंह, महानिरीक्षक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
केबी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
केबी सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक आम भाषा में अगर मैं पूछूं आपसे, तो मरुस्थलीकरण क्या होता है और इसके निवारण के उपाय क्या क्या होते हैं?
मरुस्थलीकरण आजकल काफी चर्चा में है। सभी लोग जानते हैं कि आज जो है डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट डे है, जो 17 जून को हर साल मनाया जाता है। तो ये कार्यक्रम जागरूकता लाने के लिए होता है। मरुस्थलीकरण बेसिकली वो प्रक्रिया है जहाँ पे किसी जगह में जो उसका नेचुरल फॉर्म है, वहाँ से वनस्पति का हट जाना, वहाँ जैसे सैंड आ जाना या ऐसी चीजें आ जाना जो अब बहुत ज्यादा मतलब उसको संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का जरूरत है पर है नहीं, इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसमें जो है आपका मृदा का लाश हो सकता है, सॉयल का लाश हो सकता है, वेजिटेशन का लाश हो सकता है, बाहर से सॉयल अंदर से आकर उसके ऊपर जमा हो सकती है और उससे उसकी जो है तो उर्वरता है वो कम हो जाती है।
खासतौर पे ये देखा गया कि रेगिस्तान का बढ़ना और मरुस्थलीकरण होना, ये दोनों किस हद तक सेम है, एक समान है या दोनों ही अलग है?
इसमें ऐसा नहीं है कि मरुस्थलीकरण, जहां मरुस्थल है वहीं ही मरुस्थल बढ़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन हम बोलते हैं जो साइंटिफिक भाषा में, तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रदेश होगा? आंध्र प्रदेश। तो ऐसा नहीं कि जहां कई जगह नेचुरल फार्म में होता है, जैसे राजस्थान में नेचुरल फार्म में है, वो भी उसमें कितना प्रयास करेंगे तो वो एक अपनी स्पीड से कम होगा, लेकिन जो इलाके हरे भरे हैं या कहीं पे कुछ और समस्या है तो उस वजह से हो सकता है। और जहां कि मरुस्थलीकरण की बात देखें, हम 10 स्टेट्स में देखें तो 80-90% वहीं तक सीमित हैं। तो उन राज्यों के लोग अगर थोड़ा जागरूक हो जाएं तो हमारी समस्या का निदान बहुत आसान है।
इसमें निवारण के उपाय क्या क्या हैं?
इसमें निवारण के उपाय आजकल जैसा सभी जानते हैं कि 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया गया है, उस थीम में भी निवारण के 3 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय ये है कि मरुस्थलीकरण को रोकना है, रोकने के लिए आप वनस्पतियां लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। दूसरा उपाय जो है उसको डिग्रेडेड लैंड अगर हो जाती है, अगर कोई जगह हो जाती है तो उसको उचित प्रकार की प्रक्रिया लेकर, जैसे वहां पे पेड़ लगा सकते हैं, वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इस तरह के उपाय कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया को रिवर्स भी करना होता है, उसमें अगेन पेड़ आपको लगाने पड़ सकते हैं, ये प्रकार से हम इनको रोक सकते हैं।
वैसे मरुस्थलीकरण के मुख्य कारण कौन कौन से हैं और उनमें से मानव निर्मित कारण क्या क्या होते हैं?
मरुस्थलीकरण के कई सारे कारण हो सकते हैं। मानव निर्मित में पहला कारण यही हो सकता है कि अगर हम यहाँ अपने भारतवर्ष में देखें तो करीब लगभग 29% जमीन जो है वो डिग्रेडेशन का शिकार है, और उसमें मुख्य कारण जो है वो पहला कारण है कि जो वाटर इरोजन है, जल की वजह से है, जहाँ पे जल का उपयोग ढंग से नहीं हो रहा है। दूसरा कारण जो है वनस्पति का लॉस है, वनस्पति जहाँ पे कम हो रही है। और तीसरा जो है एयर के द्वारा जो इरोजन हो रहा है, ये मुख्य कारण है। तो इनका समाधान भी इसी में समाहित है। जहाँ पे आपका वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पानी का सही सदुपयोग करें, जितना पानी जरूरत हो उतना प्रयोग करें। खेती में जो जहाँ इफेक्टिव विधियां हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, वो करें, ऐसी फसलें लगाएं जो पानी कम लेती हैं। इसी तरीके से जहाँ वनस्पतियों का सवाल है वहाँ पे पेड़ लगाएं, काटें नहीं पेड़, पेड़ उतने ही काटें जितने जरूरत हो। और जैसा आप सभी को पता होगा कि इस साल हमने एक प्रतिज्ञा ली है कि 140 करोड़ पेड़ लगाएंगे, और इसका नारा ये है एक पेड़ माँ के नाम। तो हर व्यक्ति से मेरी गुजारिश है कि अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएं और उनको सम्मानित करें, और ये पेड़ लगाएं ही नहीं, उसका रख रखाव भी करें और अगले साल भी उसको देखने जाएं और अगले साल देखने जाएं, तो ये इंश्योर कर लें कि वो पेड़ जो है एक बड़ा पेड़ इस्टेब्लिश होके उसका मुहूर्त रूप ले ले।
वैसे प्रकृति अपने आप में ही कई बार ऐसा करती है जिसके कारण मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है, तो प्राकृतिक कारण प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और उन्हें हम अगर प्रयास करें तो किस तरह से रोक सकते हैं?
जो प्राकृतिक कारण हैं उसमें जो हमारा बहुत कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कोई साइक्लोन आ गया है जहाँ पे जैसे खारा पानी ऊपर आ जाता है, वहाँ पे जमीन खराब हो जाती है, तो उसको खराब हो जाने के बाद अगर वो उसमें साल्ट ज्यादा हो गए तो धीरे 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 उसका निवारण होता है। इसी तरीके से कहीं अंधड़ आ गया है और रेत ज्यादा आ गई है तो वहाँ पर रोकने के लिए जरूरी है कि वहाँ हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। तो इस तरीके से जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आ गई तो बाढ़ के कई बार फायदे भी होते हैं कि कुछ जगहों में बहुत बढ़िया आपको मिट्टी मिल जाती है, लेकिन कई जगहों में जैसे पहाड़ों में क्या होता है, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो वहां पे उसी के अनुरूप उपाय करने होते हैं, जैसे पेड़ लगाना है या लैंड को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें बंश बनाने हैं। तो ये सब प्रक्रिया धीरे धीरे करके वनस्पतियों के जरिए ही ज्यादातर वो होता है, क्योंकि आपदाएं इतनी बड़ी वो प्रलय लाती हैं जिसका हम इंजीनियरिंग से अगर समाधान ढूंढें तो बहुत लिमिटेड रहता है और एरिया बहुत ज्यादा प्रभावित होता है।
आपने प्रभाव की भी बात की थी, तो मरुस्थलीकरण के मुख्य प्रभाव कौन कौन से, खासतौर पर अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव से जोड़ करके देखें तो?
तो मरुस्थलीकरण का पहला प्रभाव यही है और वही मेन प्रभाव है कि जो हमारी धरती है उसकी जो सेहत है, उसका जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। और हर चीज हमारी धरती पृथ्वी माँ से निकलती है, अगर उसकी सेहत ठीक नहीं होगी तो उस पे निकलने वाली वनस्पतियां अच्छी नहीं होंगी, अगर उसमें पानी का संचरण होता है, जो ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होती है वो ठीक से नहीं होगी, अगर उसमें साल्ट ज्यादा आ गए तो नीचे की वाटर टेबल पोल्यूटेड हो जाएगी। ये प्रभाव मेन वही धरती पे होता है। उसके अलावा फिर उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो हमारी फसलों की उपज कम हो जाएगी, उसके अलावा जो हमारा एयर की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी, उसमें प्रदूषण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जो पार्टिकल्स बोलते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये सब प्रभाव जो है हमें प्रभावित करते हैं, हानिकारक ही होते हैं प्रभाव सारे।
वैसे इसमें सामाजिक प्रभाव और आर्थिक प्रभाव भी होते हैं इसके?
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादकता जब प्रभावित होती है तो सामाजिक आर्थिक पहला ही कारण है। और जैसा कि जानते हैं अभी भी हमारा देश काफी उन्नति कर गया है लेकिन फिर भी कृषि का बहुत ज्यादा रोल है, और अगर वो प्रभावित होता है जो प्राइमरी इकोनॉमी है तो सर्टेनली जो है उसमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं।
भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति अभी कैसी है और भारत द्वारा मरुस्थलीकरण पर अंकुश लगाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं?
एक जो ये प्रक्रिया है मरुस्थलीकरण की, इसको जन आंदोलन बनाने के लिए हमारे मंत्रालय ने जो अभियान शुरू किया है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए, और इसके अलावा जो पेड़ लगाने के लिए हमने इसको आगे स्केलेट करने के लिए बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम भी किए हैं, राज्यों से भी बात की है, तरह तरह के उपाय, तरह तरह के नवाचार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी रेगुलर स्कीम्स हैं जैसे ग्रीन इंडिया मिशन है, तो ग्रीन इंडिया मिशन में ये पहले जैसा आइसोलेटेड पेड़ नहीं लगाते हैं, इसमें एक लैंडस्केप लेते हैं, एक एरिया को लेते हैं और उसकी पूरी समस्या को समाधान करने के लिए कि कहाँ पे पेड़ लगाना है, कहाँ पे हमने बंड बनाने हैं, कहाँ पे पानी रिस्टोर करना है, तो ये पूरा लेकर उस एरिया को वो करते हैं। इसी तरीके से हमारी एक स्कीम है इको टास्क फोर्स, जो एरिया बहुत दुरूह होती हैं, बहुत कठिन एरिया होती हैं, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान हुआ, उत्तराखंड में कुछ इलाके जहां माइनिंग हो गई थी वो हुआ, जम्मू कश्मीर के इलाके हुए, असम में हुए, तो ऐसे कठिन जगहों में प्रादेशिक सेना एक कुछ इलाका लेती है और उसको रिस्टोर करती है और वो इलाके बहुत अच्छी तरीके से आए हुए हैं। इसके अलावा पिछले साल हमारे यहाँ एक स्कीम आई है मिस्टी, जो मैंग्रोव के लिए है, जो हमारी शोर लाइन होती है, जो कोस्टल लाइन होती है जहाँ पे मैंग्रोव होते हैं, तो जो लोग मैंग्रोव एरिया में रहते हैं वो इसके प्रभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ पे मैंग्रोव अच्छा होता है वो मैंग्रोव केवल हमें हरियाली नहीं देता है, वहाँ पे जो मछलियां हैं अपने अंडे देने आती हैं और कई सारी इकोनॉमी है, जैसे सुंदरवन में शहद है, तो ये सब चीजें वहां से आती हैं, वो मतलब एक वहां के लोगों के जीवन यापन के लिए बहुत सामग्री मिलती है।
वैसे हमने भारत की बात तो कर ली केबी सिंह जी, और मरुस्थलीकरण केवल भारत की समस्या नहीं, वैश्विक स्तर पर भी इस समस्या को पाया जाता है, तो वैश्विक प्रयास की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अपने श्रोताओं को बताएं, तो क्या क्या उपाय मुख्य रूप से किए गए हैं?
वैश्विक प्रयास, जैसे आज डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे के अवसर पे बताना चाहेंगे कि आज जो हमारा 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 30 साल हो गए इस साल, और इसका मेन फंक्शन जर्मनी में मनाया जा रहा है, तो इनका एक नारा है कि यूनाइटेड फॉर लैंड। तो हम अपनी जमीन के लिए पूरा वैश्विक स्तर पे सभी को आह्वान किया है कि सब लोग यूनाइटेड हो जाएं और ये लीगेसी हमारी जो पुरानी है उसको बनाए रखें और फ्यूचर जनरेशन को सुपुर्द कर दें। इसमें हर जनरेशन के जो है हर जनरेशन पार्टिसिपेट करे, ये उनका नारा है और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया हुआ है। तो ये सारे प्रयास एक साथ मिलकर किए जा रहे हैं, और ऐसा ही नहीं है कि वैश्विक स्तर पे सारे देशों ने इस कन्वेंशन में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसका डाटा भी एक रिपोर्टिंग होती है कि किस देश में कितना है और कौन सी जगह ज्यादा प्रभावित हो रही है, ताकि उसी हिसाब से आगे की नीतियां बनाई जा सकें और उनको जो है कार्यान्वित
किया जा सके। केवी सिंह जी, कई बार हमने ऐसा पढ़ा है कि यूरोप वगैरह जो देश है यहाँ पर बारिश से पहले घास के बीज डाले जाते हैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, ताकि मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। क्या इस तरह के प्रयास भारत में भी हुए हैं या ये सिर्फ मतलब यूरोप तक ही सीमित रहा है?
हमने जैसा पहले बताया कि हमारे देश में कई तरह के नवाचार हो रहे हैं और हमारी सिचुएशन डिफरेंट है, हमारी जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है, हमारा जो भूभाग का जो मिट्टी है वो डिफरेंट है, सीजन्स डिफरेंट हैं, वनस्पतियां डिफरेंट हैं। तो हमारे यहाँ भी कई सारे प्रयास होते हैं, हम लोग जो प्लांटेशन मुख्यतः करते हैं और कई इलाकों में नई टेक्नोलॉजी ड्रोन से भी जो है, जैसे लैंडस्लाइड की एरिया है जहां से कोई आ जा नहीं सकता है और तुरंत उसमें कुछ करना है, तो कई हमारे जो काफी उत्साही लोग हैं, उत्साही डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने इसका भी प्रयोग किया है और वहां पे ये ड्रोन्स में जो सीड का बॉल्स लेते हैं और उसको वहां पे डाले गए हैं और कई स्टेट्स ने इसका वो किया हुआ है, तो ये प्रक्रिया आ रही है। बट जनरली हमारा मुख्यतः जो है वो प्लांटेशन ऑन ग्राउंड होता है।
केवी सिंह जी, अभी आपने लैंडस्लाइड का जिक्र किया, अगर हाल के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो ये थोड़ा बढ़ गया है, तो जरूरत है कि अब उन इलाकों में भी जो पहाड़ी इलाके वहां पर प्लांटेशन बढ़ाया जाए। तो बांस की खेती जो की जा रही है वो इसमें कितनी लाभदायक हो सकती है?
इसमें जो बांस की खेती की जा रही है इसके लिए नेशनल बैम्बू मिशन है जो कृषि मंत्रालय के अधीन है, तो वो लोग इसको बढ़ावा देते हैं। और बांस की खेती ऐसा नहीं कि सब जगह मतलब पहाड़ों में बांस ही लगाने से होता है, हर जगह की वनस्पतियों का एक अपना अलग वो होता है कि कौन वनस्पति कहाँ पर आएगी, तो वहां पे लोकल वनस्पति जो है कहीं पे बांस आएगा, कहीं पे घास भी आएगी, कहीं पे हो सकता कोई क्लाइंबर आ जाए, कहीं हो सकता कोई बड़ा आ जाए, तो ये जो उस जगह के हिसाब से जहां जो जरूरत होती है उसी हिसाब से उसका प्लान तैयार करके ही उसको रिस्टोर किया जा सकता है। मेरा कहने का ये है अर्थ कि एक फार्मूला सब जगह हमारे यहाँ नहीं लग सकता है, हमारे यहाँ जो विभिन्नताएं हैं जो वनस्पतियों की हैं, जो पहाड़ियां यहाँ आप हिमालय में इधर उत्तराखंड है हिमाचल प्रदेश है वहां वनस्पतियां डिफरेंट हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वो वनस्पतियां डिफरेंट हैं, बहुत घना जंगल मिलेगा जब आप यहाँ उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश है या जम्मू कश्मीर है तो यहाँ पर आपको कोनीफर मिलेंगे, आप नीचे जा सकते हैं, लेकिन अरुणाचल जैसे प्रदेश में आप नीचे जाएंगे तो दिन में भी अंधेरा मिलेगा, तो उसी के अनुरूप वहाँ का जो सोल्यूशन है वो करना चाहिए।
केवी सिंह जी, पिछले कई वर्षों में हमने देखा कि सड़क के किनारे खासतौर पर शहरों में सौंदर्यीकरण के लिए विदेशी पौधों को लगाया जा रहा है, हम घर में भी इस तरह के पौधे लगाते हैं, तो क्या इनका कोई नकारात्मक असर भी होता है या ये हमारे लिए फायदेमंद है?
हम जो पौधे लगाते हैं हमेशा हमारा यही रहा है, मंत्रालय का भी रहा है कि हमेशा स्वदेशी पौधे लगाएं, इंडिजिनस स्पेसीज लगाएं
जी,
उससे कई सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि वो वहां की अभ्यस्त है तो वहां पे तुरंत आ जाती है
जी।
दूसरा वो है कि वो जो भी प्रजाति है वो वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं को आश्रय देती है, बाहर की अगर कोई प्रजाति लगाई जाती है तो उसका प्रभाव हमें पता नहीं होता है, कई बार वो इन्वेजिव भी हो सकती है, इसीलिए हमेशा जब भी कोई भी हमारी यहाँ से प्रपोजल जाता है अप्रूव होता है तो हमेशा हमारा यही रहता है कि उसमें जो वहां की प्रजाति है वो लगाएं और प्रजाति मिलाकर लगाएं, मिक्स करके लगाएं, ये नहीं कि एक ही प्लांटेशन लगा दिए।
हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन के जो लाभ है वो क्या क्या है और आगे की राह हमारी क्या हो सकती है?
आगे की राह बहुत आसान है। हमने कहा जो सरकारी कार्यक्रम या सरकारी स्कीम्स चलती हैं वो तो हैं, बट एक ही मैसेज है हमारा, एक ही वो है कि एक पेड़ माँ के नाम। अगर हम ये कर लें, 140 करोड़ पेड़ लगा लेते हैं इस साल और उसका रखरखाव कर लेते हैं, तो एक अपने में एक अनूठा एग्जाम्पल होगा और हमें भी आगे आने वाले सालों में आप जब उस पेड़ को पलते बढ़ते देखेंगे तो आपको भी बहुत खुशी मिलेगी।
केवी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे मरुस्थलीकरण के बढ़ते प्रभाव और इसके स्थायी समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे केबी सिंह, महानिरीक्षक पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।